This is text 19. Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan Vacha.
Anta. Te. Katayashyami.
Katayashyami.
Divya.
Divya.
Hi. Atma.
Atma.
Vibhutayah.
Vibhutayah.
Pradhanyatah.
Pradhanyatah.
Guru Shreshtha.
Guru Shreshtha.
Nasti.
Nasti.
Anto.
Anto.
Vistarasya.
Vistarasya.
Ne.
Ne.
Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan Vacha.
Antate Katayashyami.
Antate Katayashyami.
Divya Yatva Vibhutayah.
Divya Yatva
Vibhutayah. Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Nascento Vistarasya Me.
10.19.
Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan Vacha.
Antate Katayashyami.
Antate Katayashyami.
Divya Yatma Vibhutayah.
Divya Yatma Vibhutayah.
Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Nascyanto Vistarasya Me.
Nascyanto Vistarasya Me.
Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan Vacha.
Antate Katayashyami.
Antate Katayashyami.
Divya Yatma Vibhutayah.
Divya Yatma Vibhutayah.
Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Pradhanyata Kuru Shreshtha.
Nascyanto Vistarasya Me.
Nascyanto Vistarasya Me.
Shri Bhagavan Vacha.
Antate
Katayashyami.
Antate Katayashyami.
Divya Yatma Vibhutayah.
Divya Yatma Vibhutayah.
Pradhanayatah Kuru Shreshtha.
Pradhanayatah Kuru Shreshtha.
Nascyanto Vistarasya Me.
Nascyanto
Shri Bhagavan Vacha.
Antate
Katayishyami.
Antate Katayishyami.
Divya Yatma Vibhutayah.
Divya Yatma Vibhutayah.
Pradhanyatah Kuru Shreshtha.
Pradhanyatah Kuru Shreshtha.
Nascyanto Vistarasya Me.
Nascyanto Vistarasya Me.
Is there anyone who doesn't understand? Okay. First thing is turn off your mobile. Shabby mobile, bang TGA. Kiska mobile time.
Sabhi bhaktos se nivedan hai ki apna mobile phone switch off kar de. Silent phone
mein rakha. Is there anyone who doesn't understand Hindi? Everyone understands Hindi? So you can read the translation and purport in Hindi if we have a Hindi book. Hindi book of Amar Das hai? Hindi Bhagavad Gita hai? Nahi? Okay, so you can do word for word and translation and purport in Hindi. In Hindi. Otherwise you're going to have to repeat it in Hindi, so just do it one time.
Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan Vacha.
Shri Bhagavan ne kaha.
Shri Bhagavan ne kaha.
Anta.
Anta.
Haan. Te.
Te.
तुझमे
कथयिष्यामि
मैं बोलूंगा दिव्या
दिव्या
अलौकिक
अलौकिक
ही
जरूरी
आत्मविभूतयः
आत्मविभूतयः
अपनी अलौकिक विभूतियां
अलौकिक विभूतियां
प्रधानयतः
प्रधानयतः
जो मुख्य हैं,
जो मुख्य हैं,
कुरु श्रेष्ठ,
कुरु श्रेष्ठ,
ओ कुरु के मुख्य,
ओ कुरु के मुख्य,
ना अस्ति,
ना अस्ति,
यह नहीं,
यह नहीं,
अंतः,
अंतः,
सीमा,
सीमा,
विस्तरस्य,
विस्तरस्य,
विस्तार से,
विस्तार से,
में,
में,
मुझको,
मुझको,
ट्रांसलेशन श्री भगवान ने कहा,
हाँ, just read.
Shall I read in English?
No, no. Hindi made, like they can only Akela.
श्री भगवान ने कहा कि मैं अब आपको अपने अलौकिक विभूतियों के बारे में बताऊंगा, परंतु वे जो मुख्य हैं, क्योंकि हे अर्जुन, मेरी विभूतियों की कोई सीमा नहीं है।
या तत्पर्य
परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस शुरू टू पार भगवान श्री कृष्ण की महानता की कोई सीमा नहीं है और ना ही उनकी अलौकिक विभूतियों की। जीवों की के इंद्रियों की सीमाएं नियमित हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह समझने में वो पूरी नहीं है। फिर भी भगवान के भक्त भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से भगवान को कभी नहीं समझ सकते। एक काल में भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मोहिक है कि वे सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए वे भक्त भगवान की लीलाओं के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। जब भक्त लोग भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो भक्तों को अलौकिक आनंद मिलता है, इसीलिए वे भगवान की लीलाओं के बारे में निरंतर चर्चा करते रहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि जो जीव है वो मेरी पूरी लीलाओं को नहीं जान सकता, इसीलिए वे मुख्य लीलाओं के बारे में बताते हैं। ये शब्द प्रधान यतः प्रिंसिपल मुख्य यहाँ बहुत मुख्य है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हम भगवान की मुख्य विभूतियों के बारे में ही थोड़ा बहुत जान सकते हैं, क्योंकि उनकी विभूतियां अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, और किसी जीव को उनकी अनंत विभूतियों के बारे में समझना संभव भी नहीं है। और विभूति जो कि इस श्लोक में इस्तेमाल किया गया है, और वो भगवान अपने द्वारा उसको वश में करते हैं। अमरकोश डिक्शनरी में विभूति शब्द को का मतलब समझाया गया है, उसमें बताया गया है कि ये उनकी अनोखी अलौकिक शक्तियां हैं। मायावाद लोग इस चीज को नहीं समझ सकते, मायावाद लोग भगवान की अलौकिक शक्तियों के बारे में नहीं समझ सकते। दोनों लौकिक और अलौकिक संसार में भगवान की शक्तियों का वितरण हुआ है, और अब भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में सीधे सीधे आम जीव को बता रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय।
ladies may want to move up so that there's room in the back. आगे आइए.
माता जी लोग थोड़ा आगे आ
जाएं. और प्रभु जी थोड़ा लेफ्ट साइड. The ladies have enough room. Or do they need another row? I guess that's what. You have enough room. Om Gyanati Mirantasya Gyananjana Shalakaya Shakshurin Miditam Jena Tasmai Shri Gurudeva Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tathati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jata Padukamadam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Chagrajatam Shagana Jagannathan Vitam Stam Sadivam Shadaitam Shabatutam Parijana Saitam Krishna Chaitam Nadevam Shri Radha Krishna Padam Shagana Dalita Shri Vishakam Vitascha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kam Shana Gaurangi Radhe Vrindavaneshari Vrishabhanu Sike Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataruvyascha Kripa Sindho Vyaye Vacha Pratita Nam Pavanevyo Vaishnavevyo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hantate katayashyami divya hyatmi. Maybe the children would like to play. Outside is... No, why? Why make them sit there? Why not let them play outside if they want to play? If they want to play, it's a big world, big courtyard, they can play. Why force her to sit? Yeah, she's smart. She knows what she's doing. She'll have more fun and I'll have more fun. You're the next candidate, sweetheart. Sh- Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha Antate Kati Yashyami Divya Hyatma Vibhutaya Pradhanyata Kuru Shreshtha Nascento Vistarasyam. This chapter of Bhagavad Gita is called the Vibhuti Yoga chapter. Arjuna has asked Krishna how he can always remember Krishna. Within this material world. How do you pervade the entire material world? The impersonalists generally think of God as all pervading. But here in the Bhagavad Gita, Krishna is going to give us a hint of how to think of Him, the personality of Godhead, everywhere. Keshu keshu tapaveshu chintyosi bhagavanmaya. Arjuna has asked, how can I think of you even within this world of material things? Please tell me about your vibhutis. Vibhuti, Srila Prabhupada says, means a special opulence. And in this chapter, Krishna will tell of special manifestations that represent Him. At the end he'll say, yad yad vibhuti mat sattvam shrimat urjita nevava tat tad eva vagaccha tvam manate jamsa sambhava. Whatever you see in this world that's great or beautiful or powerful is just a manifestation of a small spark of my energy.
भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी आप शक्तिशाली या सुंदर वस्तु देखते हैं वो सब मेरे ही कारण व्याप्त है. सब में मैं ही
हूँ. So within the Lord's energies there are these vibhutis. To give an example, Krishna says, among the fish, I'm the shark, because the shark is the greatest of the fish.
भगवान कहते हैं कि मछलियों में मैं शार्क हूँ.
Among the animals, I'm the lion.
और सभी पशुओं में मैं सिंह हूँ, श्वेत.
Among men, the king.
और सभी नरों में मैं नरपति, राजा हूँ.
The greatest in every category represents Krishna.
सबसे महानतम किसी भी विषय में वो भगवान कृष्ण है.
So Arjuna has asked Krishna, please tell me in detail about all of these vibhutis.
So वही अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, मुझे विस्तार से बताइए इस चीज के बारे में.
So Krishna says, what detail? How can I tell you in detail? I'll tell you in pradhanyata, I'll tell you some of the chief vibhutis.
अर्जुन कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी सभी विभूतियों के बारे में तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, इसलिए मैं केवल मुख्य मुख्य ही बताऊंगा क्योंकि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं.
Pradhanyata Kuru Shreshtha Nascento Vistarasyame. There's no end to my vibhutis, so I'm only going to tell you a few of the prominent ones.
मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं केवल कुछ मुख्य विभूतियाँ ही तुम्हें बताऊंगा.
Srila Prabhupada comments that we're never going to understand Krishna fully.
और Srila Prabhupada जी कहते हैं कि हम भगवान को पूरी तरह से कभी भी नहीं समझ सकते हैं.
Not possible.
ये possible नहीं है.
Even Krishna doesn't fully understand himself.
भगवान स्वयं अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानते.
In Chaitanya Charitamrita we find that he expands his energy to understand himself, but then as soon as he does that, he's also expanded. And then he expands his energy again, but then his opulence is expanded. Again he expands his energy to understand, but again he's expanded his opulence.
चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि भगवान अपने आप को समझने की जब कोशिश करते हैं तो फिर वो अपना एक्सपेंशन विस्तार करते हैं और फिर उस विस्तार में फिर अपने आप को फिर विस्तार करते हैं, इस तरह से वे समझ नहीं पाते हैं।
This is the nature of Krishna.
ये भगवान का स्वभाव है।
So the devotee doesn't expect to be able to understand Krishna fully.
और भक्तों से भी आशा की जाती है कि भगवान को पूरा समझने की कोशिश न करें।
He just wants to go on hearing about Krishna.
तो भगवान के बारे में सुनते रहें।
In the previous verse, Srinvato nasti me mrutam. Bhuya katya triptir hi Srinvato nasti me mrutam. Arjuna says, I never tire of hearing about your glories.
अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके बारे आपकी अनंत लीलाओं के बारे में सुनते हुए कभी थकता नहीं।
Because it's all amrit, it's all nectar.
तो पूरी तरह से अमृत है और सुनने का मन करता है।
Vayam tu na vishripyamaha tam shloka vikrame yat srinvatam nasagyanam swadhu swadhu vikrame. The sages of Nainisharana said, we never get tired of hearing about your glories.
Srimad Bhagavatam mein bhi ye charitra aata hai, wahan pe Nainisharana mein jo sadhu log ekatrit hue the, wo kehte hain ki Bhagwan ki lilaon ke bare mein sunte hue kabhi thakte nahi.
This was a sign of the self-realized souls. They love to hear about Krishna.
और ये चिन्ह है उन साधुओं का जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है।
Or the fortunate soul, the soul who is attracted to hearing about Krishna.
और सभी जीवात्मा हैं जो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो भगवान के प्रति आकर्षित हैं।
The our attraction to hearing about other topics is a sign of our misfortune.
और अगर जीव कोई दूसरी तरफ आकर्षित है तो वो हमारा दुर्भाग्य है।
There are so many topics which are attractive because of the influence of the three modes of nature.
प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा ऐसी कई वस्तुएं हैं जिस तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता है।
Some are attractive to people in the mode of ignorance, some people in the mode of passion, and some for people in the mode of goodness.
कुछ लोग प्रकृति के सतोगुण के द्वारा आकर्षित होते हैं, कुछ लोग रजोगुण के द्वारा और कुछ तमोगुण के द्वारा।
The literature generally available is in the modes of passion and ignorance. The literature generally available is in the modes of passion and ignorance.
आजकल के साहित्य जो ज्यादा बाजार में उपलब्ध हैं, वे ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं।
The newspapers, the books, the television.
ये समाचार पत्र और किताबें या टीवी पर जो भी हम सब देखते हैं और ये सारी चीजें रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ग्रसित होती हैं।
Videos.
चलचित्र वगैरह सब।
The after all, it's business, and the people in the media business are not making money off the mode of goodness.
ये आखिरकार ये एक व्यापार है और सब लोग इसमें अपना पैसा बनाते हैं।
In business, the most numerous consumers are in the modes of passion and ignorance, and therefore the products are tailored toward attracting people in those modes.
व्यापार में ज्यादातर चीजें रजोगुण और तमोगुण की होती है क्योंकि लोग उसी की तरफ आकर्षित हैं, तो व्यापारी लोग अपना पैसा बनाने के लिए यही सब चीजें ज्यादा बनाते हैं और लोग आकर्षित करने की कोशिश करते हैं।
So by watching such things or by reading such literature, we become more infected by these lower modes of material nature.
इसलिए जब हम इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं या ज्यादा देखते हैं तो रजोगुण और तमोगुण में हमारा भी भाव परिवर्तित होता है।
Maybe some people are interested in topics in the mode of goodness, philosophy, or something like that.
कुछ लोग सतोगुण के तरफ भी आकर्षित होते हैं, जैसे साहित्य.
But the Krishna Katha is transcendental.
लेकिन कृष्ण कथा अलौकिक है, दिव्य है.
It's beyond the modes of nature.
ये प्रकृति के तीन गुणों से परे है.
Divya hi atma vibhutaya. I'll tell you about my divine vibhutis.
भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा.
Divya vibhuti, divya vibhutiya. Of course, all of Krishna's energy is transcendental.
सारी की सारी कृष्ण की शक्तियाँ ये दिव्य हैं.
But it works in different ways.
लेकिन ये अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं.
Some of it is working materially, some of it spiritually, but it's all Krishna's spiritual energy ultimately.
सारी की सारी कृष्ण की शक्ति है. कभी-कभी ये लौकिक तरीके से काम करती है, कभी अलौकिक तरीके से काम करती है. हमें समझना चाहिए.
Only at the present moment we're forgetting how everything is connected with Krishna. We're forgetting Krishna.
इस युग में खासकर हम ये बिल्कुल भूल गए हैं कि सारी शक्तियाँ किस तरह से भगवान कृष्ण से संबंधित हैं.
We're seeing the material things, but we're not seeing the connection with Krishna.
हम लोग केवल सांसारिक वस्तुएं देखते हैं, लेकिन इसका संबंध कैसे भगवान कृष्ण से है, वो चीज नहीं देख पाते.
Therefore, our vision is material.
इसलिए हमारी जो दृष्टि है, वो पूरी तरह से सांसारिक है.
We see a lion, maybe at some zoo, and we say, "Oh, what a great lion!"
हम कभी कोई चिड़ियाघर में जाते हैं, वहाँ पे अगर शेर देखते हैं.
We see a shark, we say, oh.
समुद्र में कोई अगर बड़ी मछली शार्क देखी तो उसको देख के भी आश्चर्यचकित होते हैं.
But we don't think of Krishna.
लेकिन हम भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सोचते, ये उनकी शक्ति है.
We don't think that this lion, this shark are energies of Krishna.
हम ये नहीं देख पाते कि ये शेर और ये शार्क मछली भगवान कृष्ण की शक्ति उन्हीं की वजह से.
Because we've forgotten Krishna.
क्योंकि हम भगवान कृष्ण को पूरी तरह से भूल चुके हैं.
We don't see the relationship.
भगवान का संबंध नहीं देख पाते इन वस्तुओं से.
But a Krishna conscious person sees Krishna everywhere.
लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भगवान कृष्ण को सब अवस्थाओं में देखता है.
Because he sees that everything is Krishna's energy.
क्योंकि वो देखता है कि सारी शक्तियाँ भगवान कृष्ण की हैं.
And therefore everything is meant for the enjoyment of Krishna.
और इसीलिए सारी की सारी चीजें भगवान कृष्ण के भोग के लिए होनी चाहिए.
Divya hi atma vibhutiya. Although these are all generally material things that are going to be described, as soon as we think of them in relationship to Krishna, they have divine significance, transcendental significance.
हालांकि जो भी वस्तुएं बताई जाएंगी इस वर्ष में, वो सारी सांसारिक दिखती है, जैसे शेर मछली. लेकिन जैसे ही हम उसका संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, तो उसका फिर सही मतलब निकलता है.
But the whole world is of spiritual significance when seen in relationship to Krishna.
पूरे का पूरा संसार, इसमें जो भी चीज है, अगर हम इसे भगवान से जोड़ दें, तो फिर इसका अलौकिक महत्व है.
Parasya Brahmana Shakti. Ultimately, everything is the energy of the Supreme Personality of Godhead.
अंततः सारी की सारी शक्तियाँ भगवान कृष्ण की हैं, उन्हीं की अलौकिक शक्तियाँ हैं.
Yes, therefore everything is ultimately transcendental in one sense.
और इस तरह से देखा जाए तो सारी की सारी जो चीजें हैं जो संसार में हैं, वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं.
Because it's connected with Krishna.
अगर भगवान कृष्ण से संबंधित है तो.
But although everything is connected with Krishna, everything is individual also.
हालांकि चीजें connected भी है भगवान कृष्ण से, और साथ साथ में भगवान ने उसे अलग भी बनाया है.
Everything has its own individual qualities.
हर किसी वस्तु की एक individual
गुण.
एक प्रकृति गुण है हर किसी वस्तु का.
The nectar has its qualities, poison has its qualities.
अमृत की एक अपने अपना गुण है और विष का एक अपना गुण है.
They're both Krishna's energy.
और क्योंकि दोनों की दोनों भगवान कृष्ण की ही शक्ति है
but poison acts one way nectar acts another way
अमृत अपनी तरह से काम करता है जीवन देता है और जो विष है वो जीवन ले लेता है
everything is distinct
हर कोई चीज अपने आप में विभिन्न है
electricity is one energy but with that one energy sometimes you're running a refrigerator sometimes you're running a heater
जिस तरह से जो बिजली है वो एक ही जैसी है लेकिन वो बिजली कभी जब रेफ्रिजरेटर पे जाती है तो एक तरह से काम करती है ठंडक देती है और वही बिजली जब हीटर पे जाती है तो गर्मी देती है
बिजली एक है लेकिन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वे
बिजली एक ही है लेकिन इसके रूप अलग-अलग हो जाते हैं अलग-अलग
So Krishna's energy is one, but he displays it in many different ways.
इसी तरह से भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन भगवान उसको दर्शाते हैं अलग-अलग तरीकों से.
In a fire, there's heat, there's light, there's smoke, there's wood. It's not that everything is the same.
जिस तरह से अग्नि से हमें रोशनी मिलती है और गर्मी भी मिलती है और धुआं भी मिलता है, लेकिन सब चीजों में अलग अलग अपना अपना गुण है लेकिन वो अग्नि एक ही है
The different elements work different ways. The fire works one way, the smoke works a different way.
अग्नि एक तरह से काम करती है और धुआं तो दूसरी तरह से काम करता है लेकिन दोनों का स्रोत एक ही है
The Mayavadis say that everything is one, but in practical terms, we see that that's not so. There are so many different things.
Mayavad लोग कहते हैं कि सभी चीज एक ही है, अंततः सबको एक में मिल जाना है. लेकिन ऐसा है नहीं. संसारिक तौर पे जब लोग देखते हैं तो विभिन्न विभिन्न भगवान की उनकी creations हैं.
चीज़ different things yeah. different colors different tastes
jaise vibhin rang alag alag swad is prakriti mein maujood hai
not that everything is one
har koi cheez ek jaisi nahi
hai my body say that everything is one how is it not seen to be one all that's because of maya that's my
maya vadi log kehte hain ki sab ek jaisa hai lekin aisa dikhta nahi hai kyunki wo maya ke dwara माया के वशीभूत रहते हैं इसलिए उनको ऐसा उनकी ऐसी सोच है
Everything is one they say but because of maya we see varieties
वो सब लोग मायावादी लोग सब बोलते हैं कि सारी चीज एक ही है लेकिन हम संसार के विभिन्न रूप देखते हैं वैरायटीज देखते हैं
हां नो दिस बिकॉज़ ऑफ माया वी आर सीइंग
माया के कारण
या Mayavadi Lok K, I'm sorry. That's what they say.
Yeah.
So, but then, if there's the reality and then there's Maya, which makes it seem like there are varieties, and now you have two things. You have reality and Maya.
जैसे दो अलग चीजें दिखती है तो हमको माया अलग दिखना चाहिए और जो जो अलौकिक चीजें जो रियलिटी है वो अलग दिखना चाहिए इसका मतलब दोनों एक नहीं है दोनों अलग अलग है
या सो देन व्हाट हैपेंड टू देयर थ्योरी दैट एवरीथिंग इज वन फिनिश्ड
तो फिर सिद्धांत क्या हुआ कि एक नहीं है सारी चीजें एक नहीं है इस तरह से मायावाद लोग हमेशा माया भी रह जाते हैं
To make their theory work, they need Maya. But as soon as there's Maya, now there's two. There's Brahma and there's Maya.
अपने जो उनके जो सिद्धांत है, उसको प्रूव करने के लिए कि सारी चीजें एक है, वो माया का सहारा लेते हैं. और जैसे ही माया का सहारा लेते हैं, फिर वो अल्टीमेटली फिर उसको पता चलता है दो अलग चीजें, अलग अलग चीजें.
Therefore, their theory doesn't work.
और इसलिए उनका सिद्धांत काम करता नहीं.
There's Krishna, and Krishna has different energies.
भगवान एक हैं और उनकी अनेक शक्तियाँ हैं.
अनेक शक्ति is they're all one because they're Krishna's energy, but they're still different.
अनेक शक्ति उस तरह से एक है क्योंकि वो सारी की सारी शक्तियाँ भगवान कृष्ण की हैं, लेकिन सारी शक्तियाँ अलग अलग तरीके से काम करती हैं।
Even in the spiritual world, there's variety, just that variety is eternal.
और अलौकिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं और विविधताओं में अनेक कार्य होते हैं।
So this Vibhuti Yoga chapter is very useful chapter, very.
इस तरह से जो ये अध्याय 10 है विभूति योग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
By reading it thoughtfully, we'll be able to increase our remembrance of Krishna.
और इसको अगर अच्छे से हम पढ़ें, ध्यान लगा के, तो भगवान का हमें स्मरण और बढ़ेगा, आसानी होगी।
Remembering Krishna, our life becomes successful.
और भगवान कृष्ण को अगर हमेशा स्मरण करते रहें, तो हमारा जीवन सफल होगा।
There's some questions. Prabhu Krishna.
If anyone has a question, then ask. I have
a question. Hare Krishna, I have a question. Recently, I came across to meet a person who says that he doesn't believe in the personality or the supreme personality of the Godhead as such. And as I understand from him, he was influenced by different kinds of schools of thoughts. And but yet he is very much interested to understand the teachings of the Bhagavad Gita. And very recently he said that he has been influenced by some of the teachings which was of something called as a Raja Yoga, is being taught by somebody else. And where they were actually trying to talk about the personality of Godhead or the personality cult. As soon as he heard it, he just distanced himself from that. And yet he is now coming up to say that he wants to know what exactly the teachings of the Bhagavad Gita. So to such a person, like how you explain now to the teachings of this Vibhuti Yoga, is it that we can actually tell him about the Vibhuti Yoga and try to explain him of how the relationship of the Supreme Lord with all the different energies?
Yeah, every chapter is meant for being explained. It's not that everything. And we have to. He's ignorant of the science of Krishna, clearly. He's thinking in some other way. So, from 10th chapter, any 10th chapter, any chapter, we always have the same point to report that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Is that okay?
Prabhuji's question was that his meeting with a person happened. जो भगवान को जो साक्षात रूप में नहीं मानते थे कि भगवान एज ए पर्सन बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद उनको राजयोग और कई तरह के मतलब प्रैक्टिस करते थे। तो राजयोग में जब चैप्टर में उन्होंने पढ़ा कि इसमें भगवान का कोई पर्सनल रूप भी है, तो फिर वो कंफ्यूज हो गए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ऐसे करके फिर उन्होंने वहाँ से हट गए। तो गुरु जी पूछ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम क्या दसवें अध्याय के सहारे से बता सकते हैं कि भगवान ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से उनकी विभूतियाँ हैं, इनमें आप भगवान को देख सकते हो। तो महाराज जी का उसने उन्होंने बताया है कि महाराज जी कह रहे हैं कि भगवद गीता के किसी भी अध्याय से हम रेफरेंस लेकर उनको समझा सकते हैं दसवां अध्याय के, क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सन एज ए पर्सन वो एग्जिस्ट करते हैं। और कोई दूसरा प्रश्न?
We've been hearing a lot of pastimes about Durvasa Muni, though is coming across Lord Krishna, Srimati Radharani and many devotees of the Lord, but why still he is being described as an impersonalist?
Why is who being described as an impersonalist?
No, he comes across many devotees of the Lord, he meets many, he tells about the stories of Lord Krishna to many of them. But still, why he is being described as an impersonalist?
Who is that?
Durvasa Muni.
Durvasa Muni. Yes, because ultimately he's not a devotee.
But still, he's been he's an elevated soul.
He's elevated, but not so elevated. And Ambarish Maharaj is more elevated.
Many of the
other pastimes, like how would he told the glories of Purushottam month to a sage's daughter about the glories of following all the authorities in Purushottam month, how to please Lord Krishna. Though he's been giving this message to the world, but how still he is.
Durvasa Muni giving the glories of Krishna, not so much.
Yeah, I've heard a pastime like how Draupadi in her previous life was a daughter of the sage, and how he explained to her to take up the austerities of the Purushottam month so she can please the Lord and can elevate herself. Pastimes. And also you bless Srimati Radharani in Vrindavan, that whomever you put, I mean, will not be diseased. You know,
yeah, but that doesn't mean he understands everything. Just he's giving blessings even to Duryodhana.
Mataji ka ye prashna hai ki Durvasa Muni ke baare mein ki Bhagavatam mein ya ki Puranon mein aisa charitra aata hai, unhone logon ko bataya hai Bhagwan ke baare mein पूजा करने के लिए, या फिर भी जैसे माता जी पूछते हैं कि वो फिर भी मायावाद के जैसा क्यों बिहेव करते हैं, तो महाराज जी का उसमें सुझाव है. महाराज जी कहते हैं कि ही इज नॉट दैट एलिवेटेड, मीन वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए ऐसा वो ऐसा बिहेव करते हैं. जैसे कि उन्होंने बोला कि दुर्योधन को भी उन्होंने ब्लेसिंग की दुर्वासा में, तो ये सब देखिए हम बता दें.
Does humility and other divine qualities revive by itself by preaching, practicing devotional service, that is, without any endeavor by the practitioner?
जैसे सहिष्णुता और दूसरों के प्रति दया और ये सब, क्या ये अपने आप ही उजागर होंगी हमें, या जब हम डिवोशनल भक्ति करते हैं तो ये सब गुण के अपने आप आएंगे, या फिर उसको और दूसरा एंडेवर भी करना पड़ेगा, फिर से और कोई दूसरा प्रयास करना पड़ेगा?
One becomes a devotee, advanced in Krishna consciousness, all the good qualities of the Lord.
Maharaj ji कह रहे कि अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है तो सारे के सारे दैवी गुण उसमें स्वतः ही आ जाते हैं.
Problem is that we're not pure devotees.
लेकिन हमारी problem यह है कि हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाते हैं.
Therefore it's helpful for us to cultivate some of these qualities for the sake of the advancement in devotional service.
इसलिए हमें भक्ति में ये सब गुण लाने की चेष्टा करते हैं अलग से, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति पे नहीं.
Especially humility. Humility is the beginning of knowledge.
खासकर नम्रता, ये भक्ति का में पहली सीढ़ी है.
Humility is the beginning of knowledge.
नम्रता ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी.
Should we stop here? It's getting a little late.
Hare Krishna. For those who came in late, we are very fortunate to have His Holiness Jaya Tirtha Swami Maharaj with us. Maharaj is a disciple of His Dwangis, Abhishan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He has been with the movement for nearly 43 years, right from the initial days of Srila Prabhupada's movement in America. Maharaj has been extensively writing in Practical Magazine. He was the chief editor for this magazine for many years, till he gave it up very recently. He also initiating Acharya, and he travels extensively all over the world, and we have been very fortunate to have him coming to Shamadesh many times. Let's give a very big reward.